वंशा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यैः च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्यै चित्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणा यं प्रप्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं गैपायनो विरह कातरयाजुहा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयम् लोग हमारे साथ में फिर गंगा तट पर आइए और सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी को भगवत कथा सुना रहे हैं। कल हम लोगों ने संक्षेप में प्रहलाद महाराज जी तक का बतलाया, उसमें कुछ बहुत कुछ रह गया तो भी हम लोग संक्षेप में कुछ बतलाने जा रहे हैं। प्रहलाद महाराज जी को उसके पिता ने पूछा, तुमने कहां से यह सब सुना? विष्णु हमारा शत्रु है और उसके प्रति तुम्हारा ये मति कैसे लगी? और राम राम कृष्ण कृष्ण कह रहा है? तो उन्होंने बतलाया, लौकिक गुरु के उपदेश से ये नहीं होता। कोई भी लौकिक गुरु है, जैसे हमारे अभी गुरु संडा मर्क जी हैं, ये तो खुद भजन करते नहीं तो ये कैसे उपदेश दे सकते हैं? इसलिए इनके उपदेश से ऐसा नहीं हुआ। तो फिर तुमको कौन बतलाया? कहते हैं ये गुरु लोग तो यही बतलाएंगे, चर्वित चर्वणानाम। एक कुत्ता था, उसको कहीं से सूखी हड्डी मिल गई और कुत्तों को इधर उधर देखा जे नहीं है तो उसको पकड़ करके मुख में एक गड्ढे में ले जा रहा था जो वहां आराम से अकेले इसको चूसेंगे। चूसने से उसमें क्या रस था? तो सूखी हुई हड्डी है। तभी उसकी हड्डी उसके तालुओं में लगकर उसे जो रक्त निकल रहा वो समझ रहा कि यह हड्डी से आ रही, किंतु है अपना खून ही चूस रहा है। और दूसरे कुत्तों ने देखा, उसका पीछा किया और 10-20 कुत्ते उसको काटने लगे। जब काटने लगे तो उसने उस हड्डी को वहां पर छोड़ दिया और दुम दबा करके थोड़ा सा इधर उधर हट गया और कुत्तों ने जिसने लिया उसके पीछे सभी लग गए, उसी को चूस रहे हैं और उसी के लिए दिन रात लड़ झगड़ रहे हैं। फिर उसको एक ने छोड़ दिया, फिर दूसरे। हमारे बाप दादों ने इस संसार को देखा, हमारे पिताजी ने भी देखा, हमने भी देखा, तो भी उसी को चूस रहे, उससे मन नहीं भरता, दुख कष्ट पाते हैं। तो ऐसे जो गुरु हैं ये क्या उपदेश देंगे भगवान का भजन करने के लिए? ये तो महत्पुरुषों की कृपा से होती है। जो भगवान के परम भक्त हैं, जब तक उनकी चरण की धूलि में अभिषक्त न हुआ जाए, न स्नान किया जाए, नहीं हो सकता है मन भगवान की तरफ में नहीं लगेगा। इसलिए वैष्णव के चरणों में की धूलि से स्नान करना ही, धूलि से स्नान करना माने उनकी कथाओं से स्नान करना, उसको स्मरण करना, वैसा ही चलना, तब तो भगवान के चरणों में मति आएगी। उसने कहा जी हमारे गुरु गुरु नहीं है संडामर्क, और शुक्राचार्य जी विश्व के गुरु हैं, मरे हुए को जिला देते हैं, और वो गुरु नहीं है, तुमने कहाँ से सीख लिया? इसलिए उसको मारने की चेष्टा की, उसे विष दिलाया, हाथी के पैरों की तरफ कुचलवाया, पर्वत से गिराया, सांप से डसवाया, किंतु कोई भी असर नहीं पड़ा, वो मरा नहीं। वो डर गया कि कहीं इसी से मेरी मृत्यु न हो जाए। तो उस शुक्राचार्य के दोनों लड़के ने कहा जी हमारे पिताजी अभी बाहर गए हैं, कुछ दिन में आने वाले हैं, वो आ जाएंगे तो इसकी मति सुधर जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। फिर स्कूल में ले गए और वहाँ पर फिर उनको वही साम दाम दंड भेद जो आज की राजनीति है गंदी, उसी को पढ़ाने लग गए। पढ़ाते क्या है, ऐसे छल करना चाहिए, ऐसे झूठ बोलना का चाहिए, कैसे राजनीति करके शत्रु को भी अपने पक्ष में करके और दूसरे शत्रु को जीतना, यही सब, दूसरों का माल कैसे हड़प सकते हैं, यही राजनीति और कुछ नहीं। प्रहलाद महाराज ये सुनते नहीं थे। जब लेकर के फिर गए तो पढ़ाने लगे, एक दिन वो कहीं चले गए। जब चले गए गुरुजी बोले जैसा अभी मैं आ रहा हूं, लड़के लड़े झगड़ा ना करें, तुम लोग बैठे रहो यहाँ, मैं अभी आता हूं। प्रहलाद महाराज जी के ऊपर में उसका भार दे दिया। बच्चों ने कहा जैसा चलो हम लोग खेल खेलें, प्रहलाद जी ने कहा आज खेलेंगे नहीं, आज मेरी कुछ बात सुनो तब खेलेंगे। खेलते तो सारा जीवन हम खेलते आए हैं, दो एक बातें मैं कहूंगा सुनो। अच्छा क्या कहना चाहते हो? कौमार आचरित प्रज्ञ, जो बुद्धिमान है वो कुछ भविष्य की बात सुनते हैं, समझते हैं। अभी हम लोग थोड़े से दिनों आगे की बात सोच रहे हैं, अभी जीवन में अभी कुछ दिन शेष है, कैसे ये जीवन का निर्वाह होगा ये, किंतु इस जीवन के बाद में क्या होगा इसको हम नहीं सोचते। कलकत्ते के कसाई खाने में 1000 बूढ़ी गायें और भैंसे लेकर के उसके दरवाजे पर रख दिया, वहां पर बहुत से कट्टी घर हैं, रख दिया और उनके सामने हरी घास थोड़ी सी कभी यहां और वहां यहां उनके बीच में फेंक दी, और वो गाय बैले उस हरी घास के लिए अब लड़ने लगे। उनको ये नहीं पता कि बैच के बैच में 100, 200 हमको लेकर के और वहां पर काट रहे हैं, ये पता नहीं, बस हरी घास उसने ली तो उसने ली और बस सब लड़ रहे। हमारी भी यही दशा है, भविष्य की चिंता नहीं कर रहे। इसलिए भविष्य की चिंता करने वाले लोग बचपन से ही कौमार आचरित प्रज्ञो धर्मान भगवतान, भागवत धर्म का अनुशीलन करना चाहिए। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। ठाकुर जी को आंख से बंद करके प्रणाम किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कोई भी भगवान का नाम है हम कर सकते हैं। इसमें क्या प्रयास है, स्नान किया कि नहीं इसका भी नहीं है, चलते फिरते उठते बैठते ये करेंगे। इसलिए इस भागवत धर्म का आचरण बचपन से करना चाहिए। बचपन में जैसी बुद्धि रहती है, कोरा उस समय बुद्धि रहती है और हृदय रहता है, उसमें जो कुछ लिख दो लिख जाएगा, और बचपन में ही विषय की बातें भरने लगो तो वो जीवन भर नास्तिक बनेगा। इसलिए बचपन से ही आरंभ करो। प्रहलाद महाराज के बच्चों ने पूछा भैया अभी तो हम बहुत बच्चे हैं, अभी 5-6 वर्ष के बच्चे हैं, जब आएगा समय तब हम करेंगे, अभी तो हम खेलें कूदें यही सब करें, जब बूढ़े हो जाएंगे तब ना भगवान का भजन करेंगे, उसमें संसार से रिटायर्ड हो जाएंगे, प्रहलाद महाराज ने उत्तर किया, उस समय तो कमर भी सीधी नहीं होगी, सीधे ऐसे नहीं बैठ सकते, कभी ऐसे कभी ऐसे, कभी कुछ, कभी चेयर चाहिए बैठने के लिए, सीधी कमर में होगी नहीं। अभी हम देखते हैं कि बहुत से अभी नवयुवक लोग हैं, अभी 50 वर्ष भी नहीं हुआ किंतु अब बैठ नहीं सकते, 80, 90, 100 वर्ष में तो बात ही अलग, कहेंगे बात यहाँ पर बाई हो गई, बात हो गया, कभी ऐसे एक घंटा चेयर पर भी नहीं बैठ सकते, सीधे हमारे समान पैर पर पैर रख करके एकदम बैठ जाए 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा ये सब। मान लिया कि जैसे बुढ़ापा आएगा उस समय कोई काम नहीं रहेगा, उस समय नाम लेगा भैया जैसा जीवन में किया है वैसा ही फिर तुमको आएगा करने के लिए, नहीं कर सकता। और कौन देखा है जे तुम बचोगे ही, कम मृत्यु हो जाएगी, कोई ठीक नहीं, इसलिए भाई इसके लिए प्रयास मत करो, बचपन से ही भगवान का भजन करो, हरि नाम करो, ठाकुर जी को प्रणाम कर लो, चलते फिरते उठते बैठते करो, इसमें कोई भी परिश्रम नहीं है, कोई खर्च नहीं है, कुछ भी नहीं। उन लोगों ने कहा इतने जल्दी हम कैसे मर जाएंगे, कैसे मर जाएंगे, नहीं कोई भी इसका ठीक नहीं है, बचपन में मरेंगे कि गर्भ में ही मर जाएंगे, 20 वर्ष पूरा करेंगे कि 25 भी नहीं करेंगे। देखो एक बात तुमको बतलाता हूं, तत्प्रयासो कर्तव्य जत आयु व्यापार परम, एक आदमी या कोई भी व्यक्ति दुख के लिए कोई भी कार्य नहीं करता, कोई भी ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे हमको दुख हो, दुख नहीं चाहता, वो सुख चाहता है। क्या हो गया भाई, अरे बुझाओ तुम, हटा दो, हटा दो, नहीं तो और कपड़े में लग जाएगा सब, जा दो, ऐसा नहीं रखना चाहिए, इसी से भयंकर आग लग जाती है। बैठिए, कोई भी व्यक्ति संसार में, व्यक्ति की बात छोड़ो, कोई भी प्राणी जीव दुख के लिए कोई भी काम नहीं करता, किंतु ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है ऐसा जिसको दुख न हो, है कोई जिसको कोई दुख ही न हो? तो वैसे यदि सुख होगा तुम्हारे जीवन में वो भी बिना बुलाए आ जाएगा, ऐसा ये निश्चित है। अपने अपने पूर्व जन्म के कर्मों के, अच्छा और बुरे कर्मों से अच्छा और बुरा ये फल आता है, इसलिए बुद्धिमान पुरुष इसके लिए चिंता नहीं, वो तो आने ही आना ही है। जिसने कांटों का वृक्ष लगाया उसको आम के फल की आशा कहां से है, और जिसने आम का फल लगाया, वृक्ष लगाया, उसको आम आएंगे, उस तरह से अपने कर्मों का जिसने किया है वो आएगा। इसलिए इस जन्म में क्यों ना अच्छे ही काम किए जाए, और भगवान से के भजन के से बढ़कर के कोई नहीं है, इसलिए सुख दुख अपने समय से आता है, भोगा लेता है। हम कोई भी वृद्ध नहीं होना चाहते, किंतु वृद्धावस्था आएगी, जरूर भोगाएगी, मृत्यु भी जरूर आएगी, कोई रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए बुद्धिमान पुरुष बचपन से ही भगवान का भजन करता है। मान लो कि 100 वर्ष की आयु है, मान लो कि कलयुग में, पहले तो लाखों वर्ष की आयु होती थी, मैंने बतलाया, कलयुग में 100 वर्ष की आयु है, तो अजितेंद्रिय व्यक्ति वो कम से अधिक वो सब मिला करके आधा सोने में लगा दिया, बिना काम के काम में लगा दिया और सोने में लगाया, 50 वर्ष की आयु ऐसे ही चली गई। बचपन में लिखने पढ़ने और किसी विषय में काबिल होने के लिए, एक्सपर्ट होने के लिए 20-25 वर्ष का समय चाहिए, बचपन में 5-7 वर्ष तक खेलने कूदने में, फिर स्कूल में जाने में, कोई चिंता में नहीं रहने में, और इस तरह से एक्सपर्ट होने में लग गया 20 वर्ष कम से कम, आजकल और भी अधिक लगता। और 80 वर्ष से 100 वर्ष की आयु ऐसी वृद्ध हो जाती है कि डंडे पर भी नहीं चला जाता, कोई काम नहीं कर सकते, वो व्यर्थ का जीवन हो जाता है। तो ये 20 और 20-40 वर्ष और निकाल दिया, बाकी रह गया 10। इस 10 वर्ष में विवाह करना है, शादी करना है, बच्चों की शिक्षा है, दीक्षा है, घर बनाना है, एक गाड़ी से काम नहीं चलेगा, दो तीन चार पाँच परिवार में छह व्यक्ति हैं तो सात गाड़ी चाहिए, घर भी चाहिए और सुख सुविधाएं चाहिए। जितना कमाते हैं उसे पूरा भी नहीं होता, हम समझते हैं कि उसके पास में काफी बचा होगा, बहुत मुश्किल। कौन ऐसा व्यक्ति है जो उस समय में युवावस्था में 10 वर्ष की उम्र में रोते हुए बिलबिलाते हुए अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर के भगवान का भजन करने जाएगा? अपने वृद्ध माता को छोड़कर के कौन सा ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा साधारण रूप में जो माता पिता को छोड़ करके, जो उन्होंने सारा जीवन पालन किया उसको छोड़ करके भगवान का भजन करने जाए, स्त्री की मधुर मधुर बातों को छोड़ करके और अपने पति की मधुर मधुर बातों को छोड़ करके न स्त्री न पुरुष कौन जाएगा भजन करने? वो तो सुखदेव गोस्वामी, नारद और ऐसे ऐसे लोग होंगे, चैतन्य महाप्रभु होंगे, उनके परिकर लोग होंगे जो ऐसा कर सकते हैं, सबके लिए संभव है। इसलिए प्यारे बच्चों, गुरु के प्रति श्रद्धा रखो जो भजन की शिक्षा देने वाले। कौन गुरु हैं? जो हमारा दोहन नहीं करके, दोहन समझते हैं जैसे गैया का दूध दुहते हैं ना, उसे अपनी प्रॉपर्टी समझ करके शिष्यों का दोहन न करते हो, तत्व ज्ञान है, कल्याण से उनका हृदय भरा पड़ा है, ऐसे गुरु की शुश्रूषा करो, सेवा करो। क्या सेवा? सेवा वही कहेंगे वो जिसे तुम्हारी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा। जब सब लोग बच्चे सब गाने लगे बड़े प्रेम के साथ में, उसकी जोर से आवाज आई घर से, वो आवाज सुन करके उसके गुरु लोग दौड़े, जल्दी से दूत भेजा हिरण्यकश्यपु के पास में, ये देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ आप हमको दोष देंगे, ये आपका बेटा कैसा कर रहा है? और हिरण्यकश्यपु वहां से सुन करके हाथों में तलवार गदा लेकर के वहां से आया, ये क्या कर रहा, बंद करो, तुमको डर नहीं लगता? ये सब हम तुमको मना कर रहे हैं। उसने कहा, डर किस चीज का, आप में जो बल है हम में भी वही बल है, संसार का वो बल है, ये प्राणी मात्र का धर्म है। अच्छा, तो इतना ढीठ हो गया, हमको उपदेश देने लगा, तेरा वो प्रभु कहाँ है जरा दिखाओ तो उसे अभी अभी खत्म करता। हमारा प्रभु सब जगह है, इस खंभे में है, मणि का खंभा बना हुआ। हाँ, हमारा प्रभु कहाँ नहीं है, खड़ग खंभ में सर्वत्र है, अणु अणु में है, तुम्हारे अंदर हमारे अंदर में, ऐसा कोई जगह नहीं जाने। अच्छा, इस जगह में अच्छा तो देखता हूँ, बस मुट्ठी से एक मुष्टि का घात, और उसमें विचित्र न मनुष्य न सिंह, ऐसा कभी देखा नहीं, और इतना जोर से गर्जन किया कि मालूम आकाश फट रहा, और उसे पकड़ करके एक मिनट में जो पहले बर लिया था, न घर में न भीतर न बाहर, देहली पर ऊपर न नीचे, अपने घुटनों पर लेकर, अस्त्र न शस्त्र, कोई महीना नहीं, कौन सा लीप ईयर, इस तरह से शाम को नहीं दोपहर को नहीं, शाम को दोपहर को नहीं, ऐसे जो बर मंगा था उसे थोड़ा सा इधर उधर कर करके, और एक मिनट में उनका काम तमाम कर दिया, उनके नाड़ियां निकाल करके गले में पहन ली, आग जटाओं से निकलने लगी, लक्ष्मी जी डर गई, ब्रह्मा जी शंकर जी सब है, कोई उनके सामने नहीं, अंत में प्रहलाद महाराज उनकी गोदी में उतर करके बैठ गए, और निशिंत जी के आंखों से आंसू आने लग गए। बेटा हमारी आने में देर हो गया, विलंब हो गया, तुम कुछ बर मांगो। तो मैं बनिया तो हूं नहीं, जगत के लोग बनियागिरी करते हैं, मैं बनियागिरी करने के लिए आपका भजन नहीं किया, जब मैं भजन करूंगा तो आप मुझे कुछ देंगे। तो मैं समझता हूं कि आप तो दृष्टा ठीक हैं, इसलिए हमारे अंदर में कुछ मांगने की इच्छा होगी, इसलिए कहते हैं तो प्रभु जी आपकी ऐसा वर दें या हमारे मांगने की इच्छा हो तो वो खत्म कर दें, बस आपकी सेवा ले। नहीं बेटा फिर तुम दूसरा कोई बार मांगो, तुम्हारे मांगने की इच्छा ही नहीं, मैं जानता हूँ। कहा जी यदि आप प्रसन्न है तो हमारे पिताजी ने आपके प्रति जो अन्याय किया है, विरोध किया है, इसको क्षमा कर दें। अरे तुम्हारे जैसे लोग यदि पैदा हो, भक्त लोग, उसके 21 पीढ़ी के माता पिताओं का उद्धार हो जाता है, तुम इसके लिए चिंता मत करो। तो उन्होंने कहा जी और मांगो कुछ। अच्छा तो मैं एक बार मांगता हूँ, संसार में आपको भूल करके लोग बड़े दुखी हैं, मैं चाहता हूँ उनका नरक पास और कहाँ कहाँ क्या होता है, कभी स्वर्ग कभी नरक, मैं चाहता हूँ उनका सारा दुख मेरे ऊपर में मैं भोगूंगा जन्म जन्म, और हमारा यदि कुछ भजन का बल है ये सब उनको बांट दी। उन्होंने कहा कि मैं पराजित हो गया, तुम जीत गए, ऐसा तो नहीं, किंतु जो लोग हमारी लीला कथाओं को सुन करके ऐसे ही विश्वास रखेंगे उनको कोई भी कष्ट नहीं होगा, उनका जन्म मरण हम सदा के लिए दूर करके उनको शुद्ध भक्ति दे दें। ये सुन करके ऐसे ही भजन करना चाहिए, एकांत भजन करना चाहिए। एकांत माने क्या? गीता में भी कहते हैं अनन्यश्चिन्तयन्तो न अन्न अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। दुराचार व्यक्ति भी जैसे कोई भी हो, दुराचारी नीच जाति के भी हो, किंतु अनन्य रूप से हमारा भजन करता है, न अन्य केवल मेरा, मामेव मेरा ही, और कोई अभिलाषा नहीं करता, मेरे प्रति के लिए ही सब कुछ करता है, तो यह अनन्य होता है। धीरे धीरे हम अनन्य रूप से चलेंगे। यदि कोई पतिव्रता नारी है अपने पति का अनन्य भाव से सेवा न करे, दूसरे पर पुरुषों के भी यहां जाए और उनसे कुछ मांग करके लाएगा तो पति खुश होगा नहीं होगा? कहिए ये दूसरों के पास भी जाती है, उसके प्रति प्रति नहीं रहेगी। तो जो सर्वसमर्थ है सब कुछ कर सकते हैं, कृष्ण ब्रह्मा रुद्र इत्यादि जिनकी उपासना करते हैं, फिर हम दूसरों की उपासना करने से प्रभु छोड़ देगा, जाओ। जिनकी नख चंद्रिका से निकली हुई कृपा जो होती है वो सारे विश्व ब्रह्मांड का भरण पोषण करती है, ब्रह्मा शंकर अनंत विष्णु भी जिनकी सेवा करते हैं, लक्ष्मियों की लक्ष्मी दुर्गा काली और सब जो करते हैं उन्हीं की कृपा से सब कुछ करते हैं, इसलिए अनन्य भजन में चले उसका कोई भी दोष नहीं होगा। कोई राम का भजन करता है, हनुमान जी का एकांताश रूप में आश्रय लेकर के राम का भजन करता है। जनकपुर की महिलाएं थीं, जब रामचंद्र जी को देखा ये सीता से विवाह हुआ तो उन्होंने प्रार्थना की राम से या भगवान से प्रार्थना की, हमारा वर भी ये राम ही हो। रामचंद्र जी ने कहा मैंने तुम लोगों को अंगीकार कर लिया किंतु इस जन्म में नहीं, अब द्वापर युग आने वाला है, मैं कृष्ण होकर के आऊंगा और तुम गोपी होकर के आएगी, उस समय तुम मुझसे हमारी शादी होगी। तो ये राम ने व्यवस्था कर दी ना, जितने वर्ष में राम यज्ञ करते थे उसमें सोने की सीताएं बनती थी और उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती थी, और प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में राम के साथ में यज्ञ होता था और उनमें प्राण का संचार हो जाता, और फिर दूसरे वर्ष दूसरी बनती तो वो सीताएं ज्योति बनी हुई थी। उन्होंने कहा अब हम आप ही के साथ में रहे। अच्छा ठीक है, अब तुम लोग हमारा कृष्ण का जो आ रहा है उस समय तुम लोग गोपी बन करके आएगी, तुमको ग्रहण करें। राम ने रास्ता निकाल लिया ना, इसलिए राम प्रसन्न होंगे। हनुमान जी हैं कौन? शंकर जी हैं। अपने इष्ट देव जब कृष्ण ही राम के रूप में आते हैं तो शंकर जी हनुमान बनकर के सेवा करते हैं। गरुड़ जी हैं कौन? उनकी सेवा करने के लिए यही शंकर जी ही गरुड़ इत्यादि बने हैं। तरह तरह से सेवा करते हैं। वृंदावन में गोपीश्वर बने हुए हैं। इसलिए एकांतिक रूप में भजन करने के लिए करेंगे तो हनुमान को छोड़ना कहां हुआ? आप भगवान का भजन कर रहे हैं तो क्या घरवाली को छोड़ दिया? और उसकी स्त्री भगवान का भजन करती है तो क्या अपने पति को भी छोड़ दिया? भक्तों को नहीं छोड़ना, हनुमान जी तो परम भक्त हैं। उस लीला में जो सहायक होती हैं देवियां, ललिता, विशाखा, ये संतोषी मैया, लक्ष्मी जो है ना वैकुंठ की, उसे कोटि कोटि गुण श्रेष्ठ हैं। ये दुर्गा इत्यादि हैं कौन? जोग माया की छाया हैं, कोई दूसरी चीज नहीं है। ये छाया आकर के छाया चीज देती हैं। छाया चीज देना माने क्या? धन दौलत, स्त्री पुत्र परिवार, जो कुछ दोनों के बाद में नष्ट हो जाएगा और दुख देगा। इसलिए बुद्धिमान पुरुष एकांतिक रूप में राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, भजन करते हैं, या राम सीता इत्यादि का भजन करते हैं। धीरे धीरे वो भी उसी में आ जाता है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक आसाधन करने से, भगवान का आसाधन करने से सब कुछ हो जाता है। इसलिए गीता में स्पष्ट करके ऐसे भजन को बतलाया गया है, ये विधि पूर्वक नहीं है, विधि पूर्वक करो। इस तरह से प्रहलाद महाराज जी जैसे, हनुमान जैसे एकांतिक भक्ति हो, गोपियों जैसी एकांतिक भक्ति। गोपियों को साधारण मत समझना, ये सब वैकुंठ की लक्ष्मियों से भी बहुत श्रेष्ठ है। इसलिए एकांतिक भजन करने का प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। देखो कुछ भक्ति की कथा हम रामायण से अब आप लोगों को सुना रहे हैं। अब दो दिन का और समय है, कल से मैं शुद्ध रूप में गोपियों की कुछ भक्ति की बात बतलाऊंगा। आज उसकी भूमिका कुछ बांधो। हम लोग अधिकांश रूप में कैकई से घृणा करते हैं। राम का ऐसा कोई भी पात्र नहीं है जो घृणा के योग्य हो। यहां तक कि रावण और कुंभकर्ण भी ये वैकुंठ के जय विजय हैं, खेल तमाशा दिखला करके, अभिनय करके, लीला करके, जगत के शिक्षा देने के लिए अपने परिकरों के साथ गया है। कोई भी बद्ध जीव उनकी लीला में प्रवेश नहीं कर सकता, उनके पात्र सभी ऐसे हैं। तो और की तो बात क्या, ये कुंभकर्ण, रावण इत्यादि भी ये भगवान के परिकर हैं। वैकुंठ जगत से सज धज करके, परामर्श करके, पाठ दे करके वो लोग आए थे, इसे जगत के लोग कुछ शिक्षा करें। कैकई मैया साधारण नहीं है। यदि देखा जाए तो इनका जो अभिनय है, लीला है, बहुत ही रोमांचक और बहुत ही उच्च कोटि का है। महाराज दशरथ कभी शिकार खेलने के लिए गए या प्रजाओं का देखने के लिए गए। रात हो गई, अपने मित्र कैकई नरेश के यहां ठहर गए। उन्होंने बड़ा अवभगत किया और अपनी 16 वर्ष की लड़की कैकई को आदेश दिया, अयोध्या कौशल के राजा आए हैं, इनकी परिचर्या का भार तुम्हारे ऊपर में रहेगा, खाना पीना और बिस्तरा इत्यादि सारी वस्तुओं की व्यवस्था तू करना। वो सब काम में बड़ी निपुण थी और परम सुंदरी थी। उसने सारी चीजों की इस प्रकार से व्यवस्था की और मधुर व्यवहार किया। जब सवेरे चलने का समय हुआ तो महाराज दशरथ कैकई नरेश के पास में गए, बोले जी आपसे एक हमारा निवेदन है, मैं अब चल रहा हूँ, आपकी लड़की ने हमारी जो सेवा की मैं बहुत गदगद हो गया, यदि आप कुछ बुरा न समझें तो आपसे निवेदन ये करता हूँ कि आप लड़की को हमें दे दीजिए विवाह करके, कन्यादान दे दीजिए। राजा बहुत प्रसन्न हुए, बोले एक शर्त के साथ, ऐसे नहीं दूंगा। शर्त क्या? यदि इसके गर्भ से कोई पुत्र होगा तो यही राजा बनेगा, आपका उत्तराधिकारी हो। राजा महाराज दशरथ हंसने लगे, 360 रानियों के साथ में मैंने विवाह किया किंतु कोई लड़का नहीं हुआ, संतान नहीं हुई, तो अच्छा है जी इसके गर्भ से कोई पुत्र हो और वही हमारा राजा होगा, इसमें कहने की तो कोई बात ही नहीं है, जरूर होगा। वचन दे दिए और साथ ही साथ में कही गई कि साथ में विवाह हुआ, उनको घर ले आए। रानियों में सबसे छोटी और बड़ी निपुण, गुणी और रूपवती, मधुर व्यवहार वाली सबसे प्रिय राजा की हो गई। और बाई चांस किस तरह से उनको पुत्र चार हुए ये भी पता आप लोगों को, राम को कैकई सबसे अधिक प्यार करती, गर्भ से तो आए थे कौशल्या, किंतु सब समय कैकई के पास में रहते, महाराज भी कैकई के पास में रहते और राम को बड़ा प्यार करते। जब ये कुछ बड़े हो गए, 5-6 वर्ष के थे, एक दिन माता कैकई की गोद में खेल रहे थे, बोले भैया तुमसे एक चीज मैं मांगना चाहता हूं। तो बोलो क्या चाहिए? फिर नहीं नहीं मत करना। तो नहीं नहीं करूंगा, जरूर दें, तुमको नहीं दूंगा तो किसको दूंगी? तुमसे ये मांगता हूं बर, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मुझे राज्य गद्दी हमें मिलेगी, उस समय राजगद्दी पर तुम हमको बैठने मत देना, उस समय में तुम ऐसी कोई बात करना जो मेरे लिए 2 बार मांग लेना, 14 वर्ष के लिए इनका वनवास और भरत तुम्हारा बेटा राजगद्दी पर बैठा। सुनकर के रोने लगे, ये तो मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती, ये संभव नहीं। तो तब फिर तो इसीलिए ना मैंने कहा मैं संसार के कल्याण के लिए आया हूं, धर्म की प्रतिष्ठा नहीं होगी यदि ऐसा नहीं करेगी, देवताओं ने मेरी आराधना करके हमको इसीलिए बुलाया है, तब तो फिर मेरा यह काम नहीं होगा। तुम जैसी मैया यदि नहीं कर सकेगी तो हमारा अवतार लेना वृथा हो जाएगा। अंत में कुछ को कैकई जी को अपना कुछ स्वरूप दिखलाया तो उन्होंने हाँ किया, अच्छा, बड़े दुख के साथ में उन्होंने स्वीकार किया। अब कुछ दिन हो गया, भूल गई, ऐसी में देवासुर संग्राम चला और देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ इस पृथ्वी से अपने रथ को लेकर के देवलोक में गए और उन्होंने असुरों को परास्त किया। जिसमें युद्ध हो रहा था उस समय कैकई ने, कैकई चला रही थी रथ, चला रही थी घोड़ों को, और उसका हठात उसका धूरा टूट गया और उसने किस प्रकार से रोक लिया, और उस समय में निर्णायक युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में महाराज दशरथ विजयी हुए। तब महाराज दशरथ ने कहा कि तुम कुछ बर मांगो, तुमने आज हमारे जीवन की और देवताओं के जीवन की रक्षा की। तो उन्होंने कहा 2 बर हम तुमको देना चाहते, कोई भी 2 बर। उन्होंने कहा जैसे आप और मैं 2 अलग अलग हूं, यह बर मैं रख लेती हूं, यदि जरूरत होगी तो हम ले लेंगे। यहां तक तो हुई। और जब रामचंद्र जी को राज्य दिया जाने लगा, कैकई को रामचंद्र जी ने इशारे से बतलाया अब वो समय आ गया है, आप जरा कठोर बन जाएंगी नहीं तो ये देवताओं का काम और जगत का काम नहीं बनेगा, बतलाओ कैसा 20 का घूट इन्होंने पिया जो दूसरा नहीं पी सकता। और उस समय में जब उनको पता लगा कि रामचंद्र की राजगद्दी होने जा रही है, हमारा बेटा तो अभी ननिहाल में है, तो कुब्जा को उन्होंने अपने हार पहना दिया। जब हार पहना दिया तो बड़ी दुखी हुई कुब्जा, अरे तुमको बुद्धि नहीं, आज तक तुम्हारी बोलबाला था, अब कुछ दिनों के बाद में यदि राजगद्दी राम राजा होगा उसकी मैया राज महिषी होगी, माता होगी राज माता, और उसकी दासी तुमको बनना पड़ेगा, अकल नहीं है बार बार जब कहने लगी तो उधर में वो भी याद आई, फिर बड़ी कठोर होकर के उसने वर मांगा। महाराज दशरथ हा राम कहते हुए प्राण छोड़ दिए, और सीताराम लक्ष्मण किस प्रकार से वन में गए रामचरितमानस में इसका बड़ा हृदय विदारक विवरण है। जब चले गए तो वशिष्ठ जी ने शत्रुघ्न को, भरत और शत्रुघ्न को बुलाने के लिए दूत भेजा, और वहां पर बड़ा अशगुन हो रहा था, आकाश में लाल लाल बादलों से खून जैसी वर्षा होने लग गई, कौवे रोने लगे, श्रृगाल रोने लगे, अश्मय में बड़ा दुर्योग दिखने लगा। भरत को और वहां बड़ी शंका हुई, कुस्वप्न देखने लगे। इतने में दूत पहुंचा, उन्होंने कहा जब आपको तुरंत एक मिनट की देरी नहीं, महाराज वशिष्ठ जी ने बुलाया है। उन्होंने सोचा वशिष्ठ जी ने बुलाया, पिताजी ने क्यों नहीं बुलाया? तो उन्होंने पिताजी ने क्यों नहीं बुलाया, वशिष्ठ जी सब बातें वहां पर बतलाएंगे, यहाँ पर बस उन्होंने कहा कि उनको लेकर के आ जाओ। उन्होंने अपने मामा से और नाना जी से आदेश लेकर के अयोध्या में आए। देखा और दिनों में तो महाराज दशरथ या राम उनकी अगवानी के लिए आते, आज कोई नहीं आया। अयोध्या विधवा जैसी पड़ी हुई, राम के बिना सब सुना। उस समय देखा जी ये कैसा हो गया, कोई आदमी चलता फिरता नहीं, आज जिसको देखता हूं वो रो रहा है, सभी लोग क्यों? इतने में देखा वो कैकई जी मंथरा को साथ में लेकर के उनको तिलक लगाने के लिए, माला देने के लिए, अगवानी करने के लिए आई, और बेटे को गोदी में लेकर के चुपचाप करके रोने लगे बड़े प्रेम से। भरत जी ने पूछा मैया तेरा ये वेश कैसा, अब सफेद कपड़े तुमने क्यों पहन लिए, पिताजी क्यों नहीं आए, पिताजी अभी हैं कहाँ? पिताजी परलोक सिधारे हैं। राम कहाँ है भैया? तो वो तो बन चले गए। किस लिए? सब कुछ तेरे लिए मैंने किया, मैंने 14 वर्ष का वनवास तेरे लिए मांगा राम का, ये सब लोग उसको भूल जाएंगे और तुम चिरकाल के लिए तू राजा बन जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा, ओह ये मेरे लिए किया, तुमैया नहीं डाइन है। उस दिन सुनाया था जिनके प्रियन राम वैदेही तजिए कोटि बैरी समयद्यप परम शनेही। मैं तुम्हें आप मान नहीं कहूंगा, तुम मुझे पुत्र मत कहना, और तुम्हारा मुख मैं अब नहीं देखना चाहता। इतना कह करके वशिष्ठ जी के यहाँ गए, उनका आदेश लेकर और सब प्रजाओं के साथ में चित्रकूट में राम को मनाने के लिए गए। किस लिए मनाने के लिए? कि भैया हमारा राजगद्दी पर बैठेगा और हम उनके साथ में रहेंगे, बड़े प्रेम के साथ में रहेंगे। जिस राज्य के लिए आजकल सभी लड़ते हैं, पांडव और कौरवों में युद्ध हुआ, और उसी राज्य लक्ष्मी के लिए फुटबॉल बनाकर कभी ये फेंक रहे हैं, वो उधर मार रहा है, पैरों से टकरा रहे हैं, ऐसा उदाहरण विश्व के इतिहास में बहुत कम मिलेगा, बहुत कम। रामचंद्र जी का भाइयों का प्रेम, माताओं के प्रति प्रेम, प्रजाओं के प्रति प्रेम, एक एक आदर्श है, सब कुछ उनका आदर्श है। रामचंद्र जी चित्रकूट में जब चले सब लोगों को लेकर के, कैकई रोने लगी और कौशल्या के यहाँ गई, बहन मैं भी चलना चाहती, मुझको भी साथ ले, भरत नहीं लेगा, और उसे मैं कह नहीं सकती, वो तो हमारी बात नहीं सुनेगा, वो तो हमारा मुख भी नहीं देखना चाहता, मैं भी चलना चाहती हूँ और राम को मैं लौटा करके ले आऊंगी, मैंने उनको वनवास दिया है, मैं ही ले करके आऊंगी, मैंने बहुत गलती किया। कौशल्या जी ने दया करके उनको भी साथ ले लिया, चित्रकूट में पहुंचे। इसके पहले तो भरद्वाज इत्यादि से भेंट हुई, कैसे कैसे बातें हुई। जब चित्रकूट में पहुंचे, जब रात में वहां रहे ठहरे, सेनाओं को नीचे ठहरा दिया, और जहां पर राम थे वहां पर खुद माताओं को लेकर के, वहां पर कुछ लोगों वशिष्ठ इत्यादि को लेकर के पहुंचे। वहां पर राम को पता लगा जे पिताजी तो मर गए। दूसरे दिन उन्होंने श्राद्ध किया और फिर भरत जी को बुलाया। भरत जी सोच रहे हैं, पहले सोचा कौशल्या जी से प्रार्थना करूं, रात में अकेले उनके पास में गए, बोले जी मैया एक बात तुमसे मैं मांगना चाहता हूं, कभी तुमसे मांगा नहीं, तुम राम को आदेश दो जो वो लौट जाए, तुम्हारी बात को कभी नहीं वो इनकार कर सकता। कहो। नहीं जी मैं कैसे कहूं, मैं तो नहीं कर सकती। तो क्यों मैं क्या धर्मशास्त्र के विरुद्ध कह रहा हूं? नहीं नहीं तुम तो बात ठीक कह रहे हो, किंतु वो भी जो झूठ तो नहीं बोल रहा, वो धर्म के विपरीत नहीं कर रहा। उसको पिता ने आदेश दिया, मैया ने आदेश दिया, वो पिता के वचन की रक्षा के लिए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाय। वो कैसे मैं इसको कहूं? अब तो कम मैं धर्म पे विपरीत हो तो नहीं, बात तो ठीक है, तुम ठीक है, किंतु वो भी तो बेठीक नहीं है, किसी तरह से मनवा नहीं सके। फिर वशिष्ठ जी के यहाँ गए, गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके बोले जी गुरु जी आप एक बात कीजिए, यदि आप हम पर दया करते हैं तो राम आपका आदेश उल्लंघन नहीं कर सकता, इसलिए राम से कहिए कि वो अभी जा करके लौट चले अयोध्या में और राज सिंहासन को ग्रहण करें। वशिष्ठ जी ने मैं कहा मैं ऐसे कैसे कहूं, कैसे कहूं, आप नहीं कर सकते, क्या मैं धर्म के विपरीत कर रहा हूं? बात तो ठीक है तुम धर्म के विपरीत नहीं कर रहे, कि तो वो भी तो धर्म के विपरीत नहीं हो, मैं कैसे पक्षपात लेकर के कह दूं? तुम ही विचार करो। उन्होंने नहीं भी माना। अंत में सुनैना जी के पास में, सुनैना जी जानते हैं कौन है? जनक जी की पत्नी। जनक जी वहां पर आ गए थे, मैया के चरणों में गिर पड़े, बोले जी मां देखो मैया सीता तुम्हारी बेटी है ना, और वन वन में जंगल में खाली पैर चल रही है, ये तुमको अच्छा लग रहा है? तुम महाराज जनक से कहो कि वो आदेश दें, और पिता भी हैं, गुरु भी हैं, सब कुछ हैं, उसलिए उसके बात को वो उल्लंघन नहीं कर सकते राम, इसलिए कह दो जैसे वो सीता जी को लेकर के लौट जाए। ये तो असंभव है भाई, असंभव है। वशिष्ठ जी से और कुछ थोड़ी सी बात हुई, वशिष्ठ जी ने कहा जैसे एक बात हो सकता है, तुम वन में जाओ और तब राम लौट करके आए, तो मैं इसके लिए बहुत तैयार हूं, बहुत जल्दी, ठीक है कल उनके सामने में यही बात होगी। ये जाने के लिए, वन में भी जाने के लिए तैयार हो गए। सुनैना जी ने भी इनकार कर दिया, मैं ऐसे बातों में उनको हस्तक्षेप नहीं करती। दूसरे दिन बड़ी भारी सभा हुई, और उस सभा में एक तरफ में अयोध्यावासी लोग बैठे, माताएं बैठी, गुरुजन सामने बैठे, एक तरफ में राम बैठे, लक्ष्मण जी बैठे, सीता जी बैठी, और बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग बैठे सब। वशिष्ठ जी ने प्रस्ताव रखा, मैं समझता हूं कि महाराज जनक से बढ़कर के कोई ज्ञानी, धर्म के बात को जानने वाला, पक्षपात रहित कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये निपटारा करें, सबकी बातों को सुन करके जैसा आदेश दें इन दोनों को करना चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा तुमको भरत उनके जनक के ऊपर में विश्वास है, उनकी बात मानोगे? रामचंद्र जी ने कहा अब तो हमारे पिताजी जो कुछ भी हैं यही हैं, जैसा कहेंगे वैसा करो। भरत से पूछा तू मानेगा? जरूर मानेंगे, जैसा ये कह देंगे वैसा ही होगा। उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किया, प्रणाम करके समाधि लगाई और बड़े गंभीर रूप से विचार किया। उन्होंने कहा भरत का प्रेम जो है ये अथाह अनंत है, समुद्र के समान में है। रामचंद्र में धर्म और मर्यादा जो है वो हिमालय की तरह अटल अटल है, किंतु प्रेम में कोई रीति नहीं होती, मर्यादा नहीं, मर्यादा उसमें डूब जाती है। इसलिए राम के में जो धर्म की मर्यादा है, भरत के प्रेम के सरोवर में, समुद्र में वो डूब जाएगी। पैसिफिक ओशन है, उसमें हिमालय भी डूब जाएगा, हिमालय 7 मील या कुछ ऊंचा है और अधिक, और ये उससे भी गहरा है, इसमें भी पर्वत इत्यादि हैं, डूब तो जाएगा किंतु छिन्न भिन्न होकर के इधर से टस मस नहीं होगा। तो भरत का प्रेम जहां है वहां मर्यादाएं नहीं काम करती, प्रेम में मर्यादाएं सब डूब जाती हैं, टूट फूट जाती हैं, इसलिए भरत का प्रेम प्रबल है, इसलिए मैं समझता हूं कि भरत की जीत हुई, भरत जैसा कहे वैसा ही होना उचित है। समझ रहे हैं ना, यही भक्ति की रीति है। प्रेम में मर्यादा नहीं रहती। सीता जी और राम में मर्यादा का संबंध है, गोपियों में और कृष्ण में किस चीज का संबंध है? प्रेम का। कभी भी सीता जी के पैरों में यदि कांटा गड़ जाए, चुभ जाए, और राम जल्दी से बैठा करके उसको निकालना चाहे तो वो हाथ नहीं छूने देगी। ये मर्यादा है संसार का। और वहां प्रेम का मर्यादा कैसा है? वहां राधा जी कृष्ण को आदेश दे रही हैं, जी यहां पर हमारे पैरों में अलता रंग चढ़ा दो, और वो चढ़ाते चढ़ाते फिर अपने सिर में भी लगा लेते हैं। मर्यादा है यहां, किंतु क्या ये प्रेम की कोई मर्यादा नहीं होती? प्रेम की अपनी मर्यादा होती है। तो प्रेम में ये सब चीजें जो होती हैं, सीता जी राम को कभी भी गाली नहीं दिया, राम ने उन्हें छोड़ दिया तो उन्होंने कहा जैसे राम जो कुछ किया ये ठीक किया है, हमारा दोष होगा ऐसा मान लिया। किंतु गोपियां क्या करती हैं, कृष्ण को लंपट धोर चोर चोट्टा जो कुछ भी होना है कह देती हैं, ठग धूर्त सब कुछ कहती हैं। यहां मां मर्यादा रही नहीं, इसलिए प्रेम में वो जो लौकिक जो मर्यादा होती है उसका कोई महत्व नहीं होता है। ये प्रेम चीज है प्रेम में। बल्कि जो प्रेमी इष्ट देव जो भगवान सर्व सब कारणों के कारण है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉड हेड है, वो भी एकदम नीचे कहां आ जाते हैं और उनको वो धूर्त है, मत आने देना इसको। रूपमंजरी राधा जी से वर मांगती हैं, कहते हैं जब वर मांगो तो कहते हैं कि देखो ये वर हम मांगती हैं कि कृष्ण हाथ जोड़ करके तुम्हारे कुंज के द्वार पर आए और वो हमसे निहोरा करे और मैं उनको आने नहीं दूं, ये वर दो। कैसा प्रेम है ये? जिस स्त्री और पुरुष में प्रेम परस्पर का होगा कुछ उच्च कोटि का, वो लोग कुछ समझेंगे ये मर्यादा और प्रेम में क्या अंतर है। तो भरत में राम में तो मर्यादा है और भरत में प्रेम है, इसलिए प्रेम में मर्यादा जो होती है वो नहीं रहती। इसलिए भरत के प्रेम सरोवर में समुद्र में ये राम की मर्यादा डूब जाएगी, किंतु डूबने पर भी उसकी मर्यादा जो है तस से मस नहीं होगी, भले ही वो डूब जाएंगे तो राम प्रेम के उसमें डूब तो जाएंगे। इसलिए भरत की जीत हुई, किंतु देखो भक्ति का एक विचार है, प्रेम का एक विचार है। क्या विचार है? अन्याभिलाषिता ज्ञान कर्मात् जनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति। भरत तुम राम को अयोध्या में किस लिए ले जाना चाहते हो, अपनी प्रसन्नता के लिए या राम की प्रसन्नता के लिए? देखो भक्ति में ये विचार है। भरत में कमी थी, कमी क्या थी? राम का तनिक भी कोई दुख नहीं देख सकते थे, क्योंकि उनके इष्ट देव है ना, सब समय उनको सुखी बनाना चाहते हैं, किंतु ये कमी थी अपने मुझे दुख उनको दुख न हो, इससे मैं सुखी रहूंगा, मुझे शांति रहेगी। और जब चले जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? भरत जी राज्य के लिए भाई को मना नहीं सके, ले नहीं सके, ये भी एक डर है। इसलिए प्रेम में क्या होता है, हमारा जो इष्ट देव है कैसे सुखी रहेगा ये पहले विचार किया जाता है। गोपियां देखती हैं अभी हम मान करेंगी तो कृष्ण मनाने आएंगे तो उनको सुख होगा, इसलिए मान करती हैं। धूर्त चोर किस लिए कहती हैं? वेद की स्तुति उनको प्रसन्न नहीं कर सकती, उनको ये सब बातें मीठी मीठी बड़ी सुहावनी लगती है, ब्रह्मा जी की स्तुतियां नहीं सुनते और गोपियों की ऐसी बातें सुनते हैं। ये है प्रेम। प्रेम में ये चीज होता है, प्रेम में ये चीज होता है। हमारा इष्ट देव कैसे सुखी हो, अपना सुख नहीं देखता। जनक जी ने कहा, जी जरा सोचो, अब तक तुम ये सोच रहे थे ये जाने से मेरी क्या दशा, इनके बिना मैं रह नहीं सकता। राम से पूछो जो वो कैसे सुखी होंगे, कभी पूछा तो ये तो पूछा नहीं, जाओ पूछो। प्रेम की भी एक मर्यादा होती है, ये हमारा प्रेमी कैसे सुखी रहेगा, इष्ट देव कैसे सुखी रहेगा, जाओ पूछो तो, ये किस में वो सुखी होगा। कहे जी आज मेरी आंखें खुली, आज से हमारे ये महाराज जनक गुरु हुए, मैं तो कभी इस चीज को सोचता नहीं था, मैं अपनी तरफ से केवल देखता था, मैंने राम से पूछा। राम के पास में गए, बोले जी भैया मैं ये चाहता हूं कि तुम कैसे सुखी रहोगे। रामचंद्र जी ने उत्तर दिया, देखो महाराज जनक ने कह दिया जी तुम्हारे प्रेम की विजय हुई है, इसलिए तुम्हारी विजय हुई है और तुम हमें राज्य लौटाने के लिए आए, इसलिए मैंने राज्य को ले लिया। हमें महाराज वहां महाराज दशरथ के बदले में मैं वहां का अयोध्या का राजा हो गया, मैंने ले लिया राज, इसके लिए आया था ना, तो तुम्हारी बात रही, तुम्हारी विजय हुई। किंतु मैं ये चाहता हूं पिताजी की बात झूठी ना हो, इसलिए मैं राज्य तो ले लिया, किंतु मैं ये चाहता हूं कि तुम मैनेजर बनकर, हमारे प्रतिनिधि बनकर 14 वर्ष के लिए इसकी रक्षा करो, मेरे राज्य की, अपने राज्य की नहीं। और तब तक मैं बहुत जल्दी से, एक मिनट का विलंब नहीं होगा, मैं लौट आऊंगा। बस भक्त की आंखें खुली, ठीक है जैसा कहें वैसा, किंतु एक चीज चाहता हूं, क्या आपकी खड़ाऊ चाहता हूं पैरों की, यही राजा रहेगा प्रतिनिधि, मैं उसका सेवक रह करके मैं प्रतीक्षा करूंगा आपकी, और एक दिन का विलंब हो गया तो आप भरत को नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे, बस जलती हुई चीता आप उसकी देखेंगे, यदि एक सेकंड की देर हो, न कि एक सेकंड की भी देर नहीं, उससे पहले मैं पहुंच जाऊंगा जहां 14 वर्ष की बात। ये प्रेम का तरीका है, अपने सुख की बात न रहे, कर्म ज्ञान योग तपस्या ये सबसे दूर रहे, अपनी कोई अभिलाषा न हो, सारी अभिलाषाएं किस लिए हो, कृष्ण सुखी रहे। कृष्ण को गाली गलौज देने से, उनके गालों में गुलचा देने से यदि खुश रहते हैं तो गोपियां ये भी करेंगी, गोपियों जैसा विश्व में उनका कोई भी अपना नहीं। गोपियों के लिए रोते हैं, तरसते हैं, गोपियों के सुख के लिए ही चिंता करके वो मथुरा गए, फिर द्वारका गए। इस चीज को समझना साधारण लोगों के लिए बात नहीं है, ये तो बड़े बड़े विरक्त रसिक महात्मा लोग जो हैं, जिनका जीवन भजन में ही बीता है, वो लोग समझ सकते हैं, साधारण आदमी चीजों को, रहस्यों को नहीं समझ सकते। इसलिए भक्ति की ये परिभाषा में है, एकांतिक भक्ति इसको कहते हैं। हमारे गुरु जी क्या चाहते हैं, गुरु जी क्या चाहेंगे बतलाइए, चाहेंगे कि हमारे इष्ट देव का ये भजन, राधा कृष्ण का भजन करें, इसी से सुख खुशी होंगे और दूसरा नहीं, इसलिए वैसा भजन कराते हैं। राधा कृष्ण क्या चाहते हैं, यदि कृष्ण सब विषयों में देने में समर्थ हैं तो फिर दूसरों के पास में हाथ जोड़ने की, मांगने की क्या जरूरत है, इसको भी समझिए। तुलसीदास जी तो यहां कहा, भगवान का राम का आश करके और दूसरों के यहां हाथ फैलाना, ये शरणागति कहां हुई, ये शरणागति तो भक्ति ही कहां हुई, वो तो सब समर्थ हैं। इसलिए चीजों को समझ करके, इस कान से सुन करके इसे निकालना नहीं है, विचार करके और इसको ग्रहण करना है, जहां तक आप लोग ग्रहण कर सकें। प्रेम को समझिए, एक पर प्रेम होने से फिर दूसरी जगह नहीं रहता, एक में अंदर में आ जाता है। समस्त भगवत्ताओं की सार ये कृष्ण हैं, राधा जी हैं, चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, कीर्तन का प्रचार किया और ये नए नए भाव जो भागवत के विचार हैं उसको जगत में प्रकाश किया। यदि महाप्रभु नहीं आते तो नाम का प्रचार जो देख रहे नहीं होता, ऐसी सुंदर सुंदर भावनाएं, भागवत का अर्थ को नहीं बदला। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी का देखो विश्व में सर्वत्र प्रचार हो, जितने बुद्धिमान लोग हैं सहज रूप में, इसके पहले कितना जोग तपस्या करना पड़ता। अब द्रौपदी राम या कृष्ण का नाम लेने से ही और ये सब भाव आना चाहिए, गोपियों के प्रेम को समझना चाहिए। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़ा सो पंडित हो बस ढाई अक्षर। एक कीर्तन कर दो, नहीं एक बात करो ये चित्रकेतु महाराज जी का उपाख्यान हो गया है ना, नहीं भारत जी का हुआ है, तो चित्रकेतु महाराज जी का उपाख्यान संक्षेप में तुम बोलो, याद है तो संक्षेप में। हंसते हुए बोले, अरे सखे देखो तो यहां पर कैसे कैसे लोग बैठे हैं, मर्यादा का भी तो ख्याल रखो, नंगे होकर के और अपनी स्त्री को पार्वती जी को गोदी में बैठ करके बैठा करके और इस तरह से उपदेश दे रहे हो, ये लोग क्या सोचेंगे। तो शंकर जी भी कुछ मुस्कुरा दिए, किंतु पार्वती जी को बहुत बुरा लगा, उन्होंने क्या शंकर को उपदेश देने के लिए तुम ही आए हो, केवल ब्रह्मा जी बैठे हैं और बड़े बड़े ऋषि लोग बैठे हैं, इनको उपदेश दे नहीं दे सके और तुम इनको, उनका गुरु है उनको उपदेश, अच्छा मैं तुमको अभी शिक्षा देती हूँ, जाओ तुमको अभी संपात नहीं करती, अभी राक्षस बन करके चले जाओ, इतना कहना था। एवं मस्तु कहा चित्रकेतु महाराज, उनको कोई भी इसे परवाह नहीं, वो तो मुक्त महापुरुष हैं। उन्होंने सिर पर उनका मस्तक पर ले लिया। शंकर जी ने कहा पार्वती जी को, अरे इस शरीर में आसक्त तो हो गई, मैंने तो ऐसी शिक्षा तुम्हें नहीं दी, ये तो मेरे परम मित्र हैं, इनको बोलने का ऐसा अधिकार है, तुमने इनको अभिशंपात दिया, इन्होंने ग्रहण कर लिया, चाहते तो उसको कहते जी हम नहीं लूंगा, तुम अभिशाप तुम्हारे पास में रहे, इनमें सामर्थ्य है, किंतु इन्होंने तो ऐसा नहीं किया, हंसते हुए उन्होंने ग्रहण कर लिया। ये जा रहेंगे इनकी भक्ति अटूट रहेगी, चाहे जिस रूप में भी रहे, इसलिए आपको भविष्य से शिक्षा लेनी चाहिए, ये आपने बहुत बड़ा भारी अन्याय किया है, हो सकता है कि भगवान की इसमें कुछ इच्छा हो ही है, सोई जो राम रचिरा का, शंकर जी तो सबका सामंजस्य करने वाले हैं, इसमें कुछ होगा। इसके बाद में वो असुर कुल में बड़े भारी वृत्तासुर के रूप में आए और आकर के इंद्र को मारेंगे, ऐसा उसके पिता ने वर मांगा था और यज्ञ से उनको उत्पन्न किया था, ऐसा पुत्र हो जो इंद्र को मारे, किंतु वेदों में मंत्रों के उच्चारण में कुछ ऐसा लघु और दीर्घ का विचार है जिससे वो उनका मांगना ही उल्टा हो गया और वो हो गया ऐसा पुत्र हो जो इंद्र के द्वारा मारा जाए, इसलिए वैदिक मंत्रों में यज्ञ में कुछ त्रुटियां होती हैं, भगवान के नाम में कुछ नहीं, इसलिए भगवान यज्ञ लाख यज्ञ करने से भी एक नाम के उच्चारण से जो फल होता है नहीं होगा, लाख कोटि दान करो तभी भगवान के नाम के पाषण के बराबर नहीं होगा, इस चीज को समझो, करोड़ों और दूसरे उपाय है उसमें कुछ कुछ दोष है, दान में भी दोष है, एक डकैत को जो मारना चाहता था एक आदमी को, लोगों को बध करना चाहता था और वो किसी कारण से घायल होकर के कहीं आ गया और भूखा और कुछ मांग रहा है, आप दे देंगे, खिलाया फिर ठीक हो गया, चिकित्सा करा दी ठीक हुआ और जाकर के 50 लोगों को कत्ल किया, इसका फल किस पर आएगा, जो खिलाया, दान तो हुआ आपने दान किया, जो घर में भूखा है ऐसे खिलाना चाहिए ऐसा तो शास्त्रों का विचार है, किंतु देख सुन करके आपने खिलाया और उसने लाख लोगों की हत्या कर दी, फिर क्या हुआ, उसका पाप आपको भी भोगना पड़ेगा, इस चीज को समझ, इसलिए दान में पुण्य में ये सब कुछ त्रुटियां हैं, किंतु भगवान नाम में कोई त्रुटि, अपराध का विचार है, अपराध वैष्णव का नहीं करना चाहिए। यहाँ पर पार्वती जी ने उस चित्रकेतु महाराज जी के चरण में कुछ की अपराध कुछ सा हुआ, सती जी पार्वती जी नहीं बल्कि सती जी थी और इसीलिए उनको अपना शरीर त्यागना भी पड़ा था, शंकर जी ने उस शरीर को भी छोड़ दिया था। ये सब परस्पर गुथी हुई चीजें हैं, इसलिए वैष्णव की कभी निंदा मत करो जो भगवान का भजन करते हैं। कोई दोष भी हो तो छोड़ो, अपना विचार करो, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अंत में जब वित्रासुर आए, जब युद्ध हो रहा था, उन्होंने इंद्र को परास्त कर दिया। इंद्र ने उनको मारने के लिए दधीची मुनि का हाड़ मांगा जीवित, और उन्होंने अपने शरीर में दही और चीनी लपटाकर गाय को चटवा करके जीवित ही अपना हाड़ दिया, जिसे वज्र बना, और फिर लेकर के उसे युद्ध करने आए तो भी नहीं पार कर सके। उन्होंने कहा क्यों नहीं मारता है जल्दी से, हमें इस शरीर में भजन नहीं होता, जल्दी से मारो, किंतु मार नहीं रहे। तब वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्या भगवान के प्रति मैं तन से मन से वचन से भगवान की सेवा कर सकूं, भगवान में हमारी प्रीति रहे, ऐसे सब स्तुति करने लगे, जो श्रीमद्भागवत में एक अलबेली चीज है। जिस प्रकार से चिड़िए के बच्चे जिनका पर नहीं उठा होता, पंख नहीं होते, अपनी मैया के लिए चिंता करते हैं सब समय, मैया कहीं गई जंगल में उसके लिए लाने के लिए, जिस प्रकार से बछड़ा अपनी मैया के लिए रोता है, दिन भर किसी तरह से रहा और शाम को मैया गाय चर करके आई तो खूंटे से उसका रस्सी नहीं खोलने देता, एकदम दो पैरों पर डां डां करता है। और जिस प्रकार से प्रिया अपने प्रदेश गए हुए पति जब आता है तो उसकी सेवा के लिए एकदम तन्मय हो जाती है, उसका गुणगान भी करती है, उसका चिंतन भी करती है, इस प्रकार से भगवान में हमारी रुचि। इसके बाद में भगवान बड़े प्रसन्न हुए और फिर किसी प्रकार से एक वर्ष में वज्र से फिर उनकी मृत्यु हुई, छोड़ करके फिर वो चित्रकेतु महाराज हो गए। कभी भी वैष्णव के प्रति अपराध न हो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता है, तन से मन से वचन से। यदि कोई बुरा काम भी वो करते हैं तो भगवान पर छोड़ो, तुमसे इसका मतलब नहीं होना चाहिए, उसका संग मत करो, उसके पास में मत जाओ, किंतु उसकी निंदा वंदना ये सब मत करो, नहीं तो ऐसी सब गड़बड़ी आती है। तो इस तरह से चित्रकेतु महाराज जी का उपाख्यान है। अब हम फिर राम कथा में, किंतु अब समय हो गया है, कल हम दोपहर में है ना, 10:30 से 12, तो ठीक है, कल समय भी मिलेगा, हम अधिक कथाएं कहेंगे और परसों भी हम अधिक कुछ कथा आप लोगों को सुनाने की चेष्टा करेंगे। और यदि किसी को मिलना है तो हम कहाँ पर हैं?